पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस अध्याय में रूही को रुद्र की शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वो अनाथों की मदद कर सके। रुद्र रूही को अपनी कैद में रखना चाहता है, लेकिन रूही को कॉलेज जाने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। रूही सिंधानिया विला जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे चैप्टर 82। अब आगे इसलिए वे रुद्र को मन ही मन बुरा भला बोलने लगती हैं, क्योंकि वे ये सब रुद्र के मुंह पर नहीं बोल सकती थी। रुद्र को भला बुरा बोलने के बाद वे अपनी बात को सही करते हुए कहती हैं, मेरा मतलब है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि दी कहीं और बिजी है? कहीं आपने मेरी दी के साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं अभी दी को देख कर आती हूँ। इतना बोल वे जाने लगती है, जिसे देख रुद्र रूही के हाथ को पकड़ अपने करीब खींच उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, रू अभी तो मैंने तुम्हारी दी के साथ कुछ भी नहीं किया है, मगर अगर तुम इसी तरह मेरी बातों को मानने में देर करती रही तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। इतना बोल वे रूही की ओर झुकने लगता है, जिसे देख रूही रुद्र से खुद को छुड़वाते हुए बोली, नहीं मैं जा रही हूँ। इतना बोल वे जल्दी से बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा बंद का कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। कुछ देर यूं ही सांसें लेने के बाद वे खुद से बोली, हे भगवान, प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता दिखाएं, क्योंकि मेरा इस इंसान के साथ एक दिन भी गुजरना काफ़ी मुश्किल है। मैं पूरी ज़िंदगी बिताने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। फिर उसे कुछ याद आता है और वे खुद से कहती हैं, रूह तुझे जल्दी से दिशा दी के पास पहुँचना होगा, वे काफ़ी परेशान हो रही होंगी। इतना बोल वे जल्दी से तैयार होने का सोच वहीं पास में रखते हुए एक बैग में से कपड़े निकालकर देखने लगती है, जो रुद्र ने उसे पहनने को कहा था। लेकिन जैसे ही वे कपड़े निकालकर देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसने ना इस तरह के कपड़े कभी पहने हैं और ना ही उसे ये पहनना आता है। वहीं दूसरी तरफ दिशा, जिसे लग रहा था कि अगर देवांश उस इंसान को जानता है तो शायद देवांश उसकी अनाथ आश्रम को वापस दिलवाने या उन सभी को वहां रहने देने में उसकी हेल्प करेगा, इसलिए वे देवांश को अपनी उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहती हैं, सर अगर आप उन्हें जानते हैं जिन्होंने वे अनाथाश्रम खरीदा है तो सर प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए, आप प्लीज़ उनसे बात करिए कि वे हमें वहां रहने दे, अगर वे हमें यूं अचानक वहां से निकाल देंगे तो हम कहां पर जाएंगे। वहीं देवांश दिशा की उम्मीद भरी नज़रों को एक नज़र देखता है, फिर दिशा को देख कहता है, मिस दिशा, मुझे मालूम है कि आप मुझसे ये सब काफ़ी उम्मीद से कह रही हैं, पर जिन्होंने ये ज़मीन खरीदी है मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वे अपनी मर्जी के मालिक हैं और मेरे कहने पर वे अपना फैसला कभी भी नहीं बदलेंगे। देवांश की बात सुनकर दिशा थोड़ी निराश हो जाती है, मगर फिर भी देवांश को देखते हुए बोली, कोई बात नहीं सर, अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ मुझे उनका नाम बता दीजिए, मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगी। दिशा की बात सुनकर देवांश दिशा को देखते हुए बोला, मिस दिशा, जिन्होंने आपके अनाथ आश्रम वाली ज़मीन खरीदी है वे कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई रुद्र सिंघानिया हैं, और ये फार्म हाउस भी उन्हीं का है, मैं तो कभी कभी यहाँ आता हूँ। दिशा के कानों में जैसे ही ये बात जाती है कि वे ज़मीन किसी और ने नहीं बल्कि रुद्र सिंघानिया ने खरीदी है, इस बात को सुनते ही उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ काफ़ी गुस्सा भी भर जाता है। उसे रुद्र पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र उन्हें इस तरह परेशान क्यों कर रहा है, अब उसे क्या चाहिए। वे ये सब सोच ही रही थी तभी उसके दिमाग में एक बात हिंट करती है कि आज रूही अनाथ आश्रम आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही सिंघानिया विला से भाग कर आई हो और रुद्र रूही को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। फिर उसे धीरे धीरे सारी बात याद आने लगती है कि किस तरह वे दोनों यहाँ आईं और उस नौकरानी का उस पर जूस गिराना और फिर वापस आने पर रूही का बहाना होना, जिसे समझ दिशा कहती हैं, इसका मतलब रूही अभी उस रुद्र सिंघानिया के पास है। इतना सोच वे परेशानी भरी आवाज में बोली, मुझे जल्द से जल्द रूही के पास जाना होगा, वरना ये इंसान रूही को डरा धमका कर फिर से अपने पास रखने के लिए मना लेगा। इतना बोल वे बिना देवांश के ऊपर कोई भी ध्यान दिए वहां से जाने लगती है, मगर वे जा पाती तभी उसकी एक चीख निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र, जो कब से रूही के आने का इंतजार कर रहा था, जब काफी देर हो जाता है और फिर भी रूही नहीं आती तो रुद्र गुस्से में बाथरूम के दरवाजे के पास जा अपनी कोल्ड आवाज में बोला, रूह इतनी देर से तुम अंदर क्या कर रही हो, जल्दी से बाहर आओ वरना मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। रुद्र की कोल्ड आवाज जैसे ही रूही के कानों में पड़ती है उसकी पकड़ अपने कपड़ों पर कस जाती है, मगर वे कुछ बोलती नहीं है। वहीं रुद्र, जो रूही के बोलने और बाहर निकलने का वेट कर रहा था, जब वे देखता है कि इतना बोलने के बाद भी रूही बाहर नहीं आ रही तो उसका सब्र जवाब दे देता है, और वे जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए गुस्से में अपना हाथ बढ़ाता है वैसे ही रूही दरवाजा खोल हल्का सा अपना चेहरा बाहर निकाल रुद्र को अपनी मासूम निगाहों से देखने लगती है। वहीं रुद्र जब रूही को इस तरह देखता है तो उसका हाथ अपनी जगह रुक जाता है और वे रूही को देख बोला, रू तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, चलो बाहर आओ। रुद्र की बात सुनकर रूही अपना सर नामे हिला देती है, जिसे देख रुद्र रूही का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके रूही सीधा जा रुद्र की बाहों में गिरती है और उसके हाथ में पकड़ी हुई साड़ी उसके हाथ से छूट जमीन पर गिर जाती है। वहीं रुद्र रूही को अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही उसकी नजर रूही पर पड़ती है, वे रूही को ऊपर से नीचे तक एकटक देखते ही रह जाता है, क्योंकि रूही सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में थी और इस तरह रूही और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं रुद्र रुद्र के इस तरह देखने से अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख खुद को छिपाने की कोशिश करने लगती है, जिसे रुद्र बखूबी महसूस कर पा रहा था। कुछ देर यूं ही देखने के बाद रुद्र रूही को देख प्यार से बोला, रू तुम्हें मुझसे खुद को छिपाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा है मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है और तुम्हें इस तरह से देखने का हक भी सिर्फ मुझे ही है, समझी रू। वैसे रू तुमने अब तक साड़ी क्यों नहीं पहनी? रुद्र की बात सुनकर रूही अपनी नजरें नीचे किए हुए ही बोली, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, आज के पहले मैंने इसे कभी नहीं पहना।
रूही की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है।